मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 5 सितंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अगले साल 2019 में 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शुभम त्यागी मेरठ उत्तर प्रदेश से और एमडी शबाब रिजवी आपका गांव है मनोहर चपरा जिला मुजफ्फरपुर बिहार से। तो शुभम और शबाब आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और खासकर ऐसे स्टूडेंट जो अभी हमारे 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बैच में आना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए तो यह एक खुशखबरी की तरह ही है। मित्रों सूचना यह है कि जो हमारा 21 अक्टूबर से 4 नवंबर का अभी का जो बैच है जो अगले महीने से शुरू हो रहा है उसमें कुछ सीटें खाली हुई हैं तो यदि आप में से कोई इस बैच के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं एक टेलीफोन नंबर आपको बता रहा हूं, मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे बातचीत करके एडमिशन करा सकते हैं। और याद रखिए कि यह अवसर कुछ ही दिनों के लिए है। अब मैं आपको मोबाइल नंबर बताता हूं, इसे ध्यान से सुने, 9669990504। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9669990504। मैं एक बार डेट दोहरा दे रहा हूं कि डेट क्या है। अभी जो बैच हमारा शुरू होने वाला है वह 21 अक्टूबर से शुरू होगा और 4 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, अब आइए हम आगे बातें करते हैं। आज का जो मुख्य विषय है उसके लिए मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को चुना है। ऐसा क्यों है मैं आगे चलकर इसके बारे में बात करूंगा। जहां तक खबरों की बात है मित्रों, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े भी लंबे समय से खबरें सुन रहे हैं और डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन रहे हैं तो शायद आप मेरे बताने से पहले यह निष्कर्ष निकाल चुके होंगे कि कल की खबरों में ऐसी कोई खास खबर है नहीं जिसे हम जनरल स्टडीज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मान सकें और खासकर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की दृष्टि से, राइट। लेकिन फिर भी एक दो बातें हैं जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहूंगा। एक तो आपको मालूम है कि कल से भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 डायलॉग शुरू होने जा रहा है, कल से शुरू होगा। ये एक महत्वपूर्ण खबर है और आपने देखा होगा कि ये जो डायलॉग शुरू होने जा रहा है, जो संवाद की जो शुरुआत होगी, अखबारों में इसके बारे में लिखा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो इसकी संभावनाएं क्या हो सकती है, क्या होना चाहिए, इस पर भी लिखना शुरू कर दिया है। मैंने जानबूझ करके उस तरह के आर्टिकल्स, उस तरह के जो कमेंट्स हैं आपको प्रोवाइड नहीं किए हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि उससे भटकाव हो जाए। जो इस विषय के बारे में थोड़ा जानते हैं, मैच्योर हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए चूंकि वो ठीक मुझे नहीं लगा था इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा था। कल अब जब बातचीत शुरू होगी तो बट नेचुरल है कि फिर अखबारों में चीजें आएंगी और वहां से जब हम इस टॉपिक को देखना शुरू करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगा। अदरवाइज फिर क्या है ना कि सिक्वेंस बिगड़ जाती है और इस बारे में तो मैं बहुत ज्यादा सतर्क रहता हूं। मुझे खुद पढ़ाई करनी होती है तब भी और जब स्टूडेंट को बताना होता है तब भी। दूसरी बात मित्रों, साइप्रस के बाद अब हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो बुल्गेरिया पहुंच गए हैं, जिस बुल्गेरिया नाम से भी जानते हैं, वहां की राजधानी सोफिया है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा नक्शे में आपने जिस तरह से साइप्रस को देखा होगा उसी तरह से बुल्गेरिया को भी देख लें। भले उन देशों के बारे में जानकारी हासिल न करें लेकिन मैप पर आपको जरूर लोकेट करना चाहिए। रोमेनिया के पास में ही है और मैं इस मायने में खुशकिस्मती रहा हूं कि मैं रोमेनिया भी गया हुआ हूं और बुल्गेरिया भी गया हुआ। बहुत ही खूबसूरत देश है बुल्गेरिया। मित्रों, आज के न्यूज़पेपर्स में मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, आर्टिकल निकल एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं इसकी चर्चा आपको न्यूज़ के तहत इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि होता है कि जब मैं मुख्य विषय पर आता हूं तो कभी कभी समय ऑलरेडी मुझे बार बार अपनी आंखें दिखा करके समाप्त करने की वार्निंग देता रहता है और मुझे लगता है कि अरे अभी तो कुछ और भी बात करनी बाकी रह गई जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स से है, तो वो चीजें कभी कभी रह जाती हैं, तो फिर बाद में मुझे थोड़ा सा अफसोस सा रह जाता है। तो मैं बता करके निश्चिंत होकर के फिर आपसे मुख्य विषय के बारे में बात करना करूंगा। एक राष्ट्रीय सहारा का है जो हमारे एशियाड में हमारे देश के खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है उसके ऊपर एक छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि किन किन क्षेत्रों में हमारा प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा, किन में प्रदर्शन बिल्कुल नया और अच्छा रहा, आगे की क्या संभावनाएं बनती हैं। जब आप इस छोटे से ही एडिटोरियल कमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ेंगे, तब आपको कुछ तथ्य खेल जगत के बारे में अब मिल जाएंगे, राइट? राष्ट्रीय सहारा का ही एक दूसरा एडिटोरियल कमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने बल्कि सोचा था कि इस विषय को मैं मुख्य विषय के तहत लूं, लेकिन मित्रों फिर मैंने पेमेंट बैंक को लिया, पोस्ट पेमेंट बैंक को, वो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। वो ये कि हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं नायडू साहब, उन्होंने अभी एक बात कही है और उनका कहना है कि जो हमारे राज्य हैं, आपको मालूम है कि राज्यों में भी दो सदन होते हैं, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यों में भी दो सदनों की व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब हमारे इतने राज्य हैं उसमें से केवल 7 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश है। ये आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, यहां दो 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 सदन है, बाकी राज्यों में एक एक सदन ही है, यानी कि विधानसभा ही है। कुछ राज्यों ने और रिक्वेस्ट किया है, उसकी जो उसका जो एक संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत कि केंद्र से अनुरोध किया है कि उन्हें भी सदन की अनुमति, दूसरे सदन की अनुमति दी जाए। तो उपराष्ट्रपति जी का यह कहना था कि नहीं, राज्यों में भी विधान परिषद होनी चाहिए। देखिए, चूंकि मामला उपराष्ट्रपति जी ने उठाया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा, और राज्यसभा क्या है? केंद्र का उच्च सदन है, और विधान परिषद भी क्या है? उच्च सदन है। तो उच्च सदन के प्रमुख ने यह मुद्दा उठाया, उपराष्ट्रपति का पद इस मायने में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अपनी तरफ से जो बात कर रहा हूं, जितना कि चेयरमैन राज्यसभा के द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। तो ये एक ऐसा इश्यू है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, खासकर मेंस में इस तरह के सब आलोचनात्मक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुछ पॉइंट्स तो आपको इस एडिटोरियल कमेंट में मिल जाएंगे, हो सकता है कि इसी को आधार बना करके आगे कुछ आर्टिकल्स लिखे जाएं, और यदि ऐसा नहीं होगा, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा न हो, लेकिन यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरी कोशिश होगी कि इसे मैं मुख्य विषय के तहत आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पर और वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपको मालूम है कि 1 सितंबर से इसकी शुरुआत हो गई है। आइए आज मैं आपको थोड़ी सी इस बात की चर्चा कर दूं कि मैंने इस विषय को क्यों चुना है, क्या है कारण है इस विषय को चुनने का, क्योंकि हमारे पास कुछ कोई तो पैरामीटर होना चाहिए ना कि कोई पर्टिकुलर विषय क्यों चुना जा रहा है मेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। इतने सारे इश्यूज होते हैं, इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, सारी घटनाओं को तो हम लेकर नहीं चल सकते, किसी के लिए भी संभव नहीं है कि सारी घटनाओं पर समान रूप से नियंत्रण रख सके, समझ विकसित कर सके। तो कोई ना कोई पैरामीटर होता है, स्टैंडर्ड होता है, और हर आर्टिकल के लिए अपना अपना पैरामीटर होता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी पर एक ही पैरामीटर लागू होगा, नॉट एट ऑल। ये जो मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को चुना है, देखिए इसका पैरामीटर क्या है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर वो क्षमता पैदा हो सके, वो दृष्टि विकसित हो सके। पैरामीटर ये है मित्रों कि ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। क्रांतिकारी कदम इस मायने में कि आपको दो शब्द अक्सर सुनाई पड़ते होंगे, दो शब्द, समावेशी विकास जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, और वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूसिव, इंक्लूसिवनेस। तो ये दोनों क्या चीज है? दोनों में है समावेश, समावेश का मतलब है शामिल करना, किसको शामिल करना, भैया आप तो उसी को शामिल करेंगे ना जो अभी इसमें शामिल नहीं है। कुछ लोग ऑलरेडी इसमें हैं, कुछ लोग इससे बाहर हैं, तो उन बाहर के लोगों को इसमें शामिल करना है। तो सीधी सी बात है कि जिनका विकास नहीं हो पाया है, आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, उन्हें विकास में शामिल करना, या यूं कह लीजिए कि उनका विकास करना आर्थिक समावेशन है, राइट? तो वित्तीय समावेशन क्या है? वित्तीय समावेशन है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, कि हर किसी को बैंक से जोड़ना। जिनके खाते बैंक में नहीं खुले हैं, उनके खाते अगर बैंक में खोल दिए जाएं तो उनका वित्तीय समावेशन हो जाएगा। बस खत्म हो गई बात। और बात केवल बैंक में खाते खोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह है कि खाते खोलने के बाद जो उन्हें बैंक की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी भी उन्हें उपलब्ध कराई जाए, कि वो उसमें जमा कर सक पा रहे हैं, उससे पैसा निकाल पा रहे हैं, उससे कुछ दूसरे तरह के जो भुगतान होते हैं वो भुगतान कर पा रहे हैं। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एटीएम पेमेंट बैंक वगैरह और एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह शुरू हो गए हैं, वो उनको फैसिलिटी मिल रही है, सरकार जो भी उनको सब्सिडी वगैरह दे रही है वो सीधे उनके खाते में जा रहा है। तो इस तरह की सुविधाएं उनको मिले तो उनका वित्तीय समावेशन हो जाएगा, राइट? अब आप देखिए कि इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सबसे बड़ी बात है, आज भी आप पाएंगे कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, नो डाउट कि उनके 40% जो शाखाएं हैं उनकी वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन वो उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही है। और जो डाक घर है, इतना पुराना सिस्टम है हिंदुस्तान का कि हमारे यहां लगभग सोचिए कि 1,55,000 डाकघर है। गांव गांव तक डाकघर की पहुंचे से आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, पूरे देश में चिट्ठियां पहुंच रही हैं, मनी ऑर्डर भेज दीजिए तो गांव गांव तक वो मनी ऑर्डर पहुंच रहा है। कितना बड़ा नेटवर्क है पोस्ट ऑफिस का, तो ये सूचना का नेटवर्क है, राइट? अब इसको आप वित्तीय नेटवर्क में कन्वर्ट कर दीजिए। नो डाउट कि मनी ऑर्डर भेजना है आपको कहीं तो डाकघर है, इसके लिए थोड़ा सा वित्तीय व्यवस्था डाकघरों के माध्यम से हो रही है, लेकिन वो बैंकिंग प्रणाली में नहीं हो रही है। अब वो बैंकिंग प्रणाली में ले ली गई, तो आप सोच करके देखिए कि ये जो शुरू हुआ है 1 सितंबर से, पोस्ट को पेमेंट बैंक के रूप में कन्वर्ट करने की बात है, तो पूरे के पूरे हमारे देश का वह वर्ग जो अभी बैंकिंग सिस्टम से बाहर है, उनका कितना अधिक वित्तीय समावेशन हो जाएगा। और जब वित्तीय समावेशन हो जाएगा तो इसका इंपैक्ट सोचिए कि किस तरीके से उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था पर पड़ेगा। तो दोस्तों, चूंकि ये जो कदम है, अगर ये सफल रहा, ये सिस्टम सही तरीके से काम कर सका, क्योंकि काम करने के क्षेत्र की बहुत सी चुनौतियां हैं, अब वक्त नहीं है कि मैं उनके बारे में आपसे बात करूं, हो सका तो मैं कल इस विषय को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। यदि यह प्रयास सफल हुआ, जो होना ही चाहिए, तो मान करके चलिए कि यह ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा, बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, आगे हम फिर बात करेंगे। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं अमन कुमार और पवन श्रीवास्तव, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।